आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 5 मार्च 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चुका है खबरों की ओर रुख करने का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और पूरे एक महीने बाद SBS हिंदी के शो में लेकर आपकी होस्ट भव्या पांडे मैं लौट आई हूँ कई सारी खबरें और गाने। पीछे ये जो एक महीना गया है, उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बिल्कुल खुशल मंगल होंगे। आज के शो में होगा बहुत कुछ और लेकर आऊंगी पीछे बीते हुए हफ्ते की कुछ खबरें। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुयुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो अगले एक घंटे में सबसे पहले हम सुनेंगे आज के ताजा समाचार। आपको बता दूं कि ईरान में युद्ध का असर ऑस्ट्रेलिया में भी दिखने लगा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और लंबी कतारों से महंगाई पर असर पड़ सकता है, इसी पर एक विशेष रिपोर्ट आप तक लेकर आऊंगी। इसके अलावा हाल ही में MP नैटली सोलेमान, जिन्होंने स्मॉल बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, वेटरन्स और यूथ मंत्रालय भी संभाला है, ने हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर विक्टोरियन पार्लियामेंट में कई महिलाओं को आमंत्रित किया था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रीति खिल्लन, जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ने बैलेंसिंग द स्किल यानी जीवन और करियर में संतुलन बनाए रखने पर अपने विचार साझा किए हैं, जो कि आज आप तक लेकर आऊंगी। इसके अलावा मेलबर्न के डैंडेनोंग इलाके में रमजान नाइट मार्केट का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जुटे थे। ऐसे में SBS हिंदी की टीम भी वहां पहुंची और आज आपको बताऊंगी कि ये कार्यक्रम कैसा रहा और किस तरह से विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाला जो ये कार्यक्रम था वो समुदाय को एकजुट लेकर आया है। चलिए, कला प्रेमियों के लिए आज एक खास प्रस्तुति भी रहेगी। मेलबर्न में आयोजित मेलबर्न इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में हिस्सा लेने के लिए भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोमकली मेलबर्न आ चुकी हैं। ऐसे में उनसे हम करेंगे खूब सारी बातें और ये जो बातचीत है आज आप तक लेकर आऊंगी। इसके अलावा आज आपको हमारे गिव अवे के विजेताओं के नाम भी बताऊंगी, जिसके लिए आपको मेरे साथ शो के अंत तक जुड़ा रहना होगा। आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम से संबंधित कोई भी संदेश या सुझाव हो तो आप मुझे 04397997667 पर भेज सकते हैं। और भी खूब सारी बातें करेंगे, कहानियां जानेंगे मेरे भारत के दौरे की और भी कई सारे संदेश आप तक लेकर आऊंगी। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और विश्व भर में क्या कुछ चल रहा है।
प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इन हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी क्षेत्र में निशाने साधे। इस संघर्ष के फैसले से पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ गई है। ऐसे में वैश्विक बाजारों पर भी इसका असर पड़ा है। निवेशकों में चिंता बढ़ी है और तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ गया है। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन हमले किए हैं। सऊदी अरब स्थित अमरीकी दूतावास को निशाना बनाया गया और इससे पहले कुवैत में भी अमरीकी मिशन पर हमला किया गया था। इन घटनाओं से क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है। वहीं ईरानी अधिकारियों के अनुसार मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर 3 मिसाइलों से हमला किया गया। उनका कहना है कि ये हमला अमेरिका इसराइल की संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा था। आपको बता दूं कि इस हमले में 160 से भी अधिक लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। मृतकों के लिए ईरान में सामूहिक अंतिम संस्कार आयोजित किया गया। इस घटना ने पूरे देश में शोक और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते तनाव पर सिडनी में बोलते हुए उन्होंने सभी पक्षों यानी अमेरिका, इसराइल और ईरान से संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कनाडा इस संघर्ष को कम करने और शांति स्थापित करने के प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार रहेगा। वहीं इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। ये इलाका हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। इन हमलों के कारण करीब 30,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे कि मानवीय संकट गहराता जा रहा है। तनाव तब और बढ़ गया जब हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल की ओर रॉकेट और ड्रोन दागे। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या के जवाब में की गई है। इसके बाद इसराइल ने लेबनान में व्यापक हवाई हमले शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलिया के फेडरल विपक्ष का कहना है कि सरकार को मध्य पूर्व में फंसे अपने नागरिकों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने दोहराया है कि मौजूदा स्थिति में वाणिज्यिक उड़ानें ही सबसे बेहतर विकल्प हैं। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त कौंसुलर संकट टीमें भेजी जा रही हैं ताकि जरूरतमंद ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की सहायता की जा सके। वहीं बात करें इकोनॉमी की तो दिसंबर तिमाही में ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था 0.8% बढ़ी, जो कि पिछले 3 वर्षों में सबसे तेजी तिमाही वृद्धि है। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार पूरे वर्ष में अर्थव्यवस्था 2.6% बढ़ी है, जो कि मार्च 2023 के बाद सबसे तेज वार्षिक वृद्धि दर है। आपको बता दूं कि सितंबर तिमाही में ये वृद्धि 2.1% थी। ऐसे में ट्रेजर जिम चार्मर्स ने कहा है कि ये प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत विकास दरों में से एक है। वहीं फेडरल कोर्ट ने नॉर्दर्न टेरिटोरी के पारंपरिक भूमि मालिकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ग्लेनकोर के मैकार्थर रिवर माइन के कारण हुए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नुकसान के लिए $54 मिलियन से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। पारंपरिक मालिकों ने 2020 में नॉर्दर्न टेरिटोरी सरकार के खिलाफ मामला दायर किया था। उनका कहना था कि खनन गतिविधियों से उनकी भूमि और सांस्कृतिक विरासत को गंभीर और लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में अदालत के इस फैसले को उनके अधिकारों की बड़ी जीत मानी जा रही है। बात करें भारत की तो राजपाल यादव की मदद करने के बाद मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर सोनू सूद ने ईरान इसराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच लोगों की मदद करने का फैसला लिया है। सोनू सूद ने कहा है कि जो लोग युद्ध की स्थिति के बीच दुबई में फंसे हैं, उन्हें मुफ्त आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने इस मदद का ऐलान सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि मानवता के आधार पर सभी के लिए किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि आप या आपके किसी भी परिचित के पास रहने की जगह नहीं है तो वे सीधा इंस्टाग्राम के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमने सुना आज का न्यूज फ्लैश। ईरान में चल रहे युद्ध का असर अब ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देने लगा है। इसका असर पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी कतारों के रूप में दिख रहा है। ईंधन की कीमतें पहले ही बढ़नी शुरू हो गई हैं और लोग पहले से ही पेट्रोल खरीदार सुरक्षित रखना चाहते हैं, खरीद कर सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में स्वाति शर्मा बताती हैं कि ईरान की ये स्थिति महंगाई को क्यों और किस हद तक प्रभावित कर सकती है।
ईरान में चल रहा युद्ध अब एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेता जा रहा है और इसके कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें कई वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं, खासकर इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने वाले अहम समुद्री मार्ग प्रभावी रूप से बंद हो चुके हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इसका असर अभी से महसूस किया जा रहा है और इसका सीधा प्रभाव वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और महंगाई पर पड़ सकता है। नमस्कार, एसपीएस हिंदी पर इस रिपोर्ट के साथ मैं हूँ स्वाति शर्मा। यह दुनिया का सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्ग है, जहां से समुद्र के रास्ते होने वाले कुल तेल परिवहन का 31% यानी करीब 1,30,00,000 बैरल प्रतिदिन गुजरता है। ओमान और ईरान के बीच स्थित गल्फ का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद प्रभावी तौर पर बंद हो गया है। जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म मरीन ट्रैफिक के मुताबिक स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में 70% की गिरावट आई है। कई जहाज फंसे हुए हैं या उन्हें दूसरा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ईरान ने कहा है कि वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को आग लगा देगा, लेकिन इसे लागू करने के लिए उसे अपने सैन्य संसाधन दूसरे अभियानों से हटाने पड़ेंगे। इसी के चलते वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में कम से कम 8% की तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड मंगलवार को जुलाई 2024 के बाद पहली बार $85 का आंकड़ा पार कर गया। संभावित आर्थिक असर को देखते हुए दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। सुजैना स्ट्रीटर वेल्थ क्लब में चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं।
We're set to be in an era of fresh energy volatility, just at a time when there had been hopes that energy prices would be coming down. It's adding fresh pain for households and companies around the world. Certain countries will be more exposed than others, and I think we're going to see this playing out in the days to come. But ultimately, it is the risks of conflict continuing to escalate with no end yet in sight that is really concerning investors and why you're seeing this financial market reaction.
Trump ne kaha hai ki yeh sangharsh 4 saptah ya usse bhi zyada samay tak chal sakta hai. Is baat ko lekar bhi chinta hai ki iska asar upbhoktaon par kya padega, khaaskar gharelu kharch aur petrol ki keematon par. इन चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि उनका मानना है कि ईरान का संघर्ष खत्म होते ही तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी।
Something had to be done, and it's been 47 years. They've been killing people all over the world for a long time. They were the kings and fathers of the roadside bomb. Soleimani, we killed him last term. Most people feel, I'll tell you what, I have never had more compliments on something I did. People felt it's something that had to be done. So if we have a little high oil prices for a little while, but as soon as this ends, those prices are going to drop, I believe, lower than even before.
द्विपक्षीय वार्ता के बाद ट्रंप के साथ खड़े जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम करना बेहद जरूरी है।
This is, of course, damaging our economies. This is true for the oil prices, and this is true for the gas prices as well. So that's the reason why we all hope that this war will come to an end as soon as possible. And we are hoping that the Israeli and the American army are doing the right things to bring this to an end and to have really a new government in place who is coming back to peace and freedom.
ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसके बाद ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने यह चेतावनी जारी की है।
I do understand people's concerns, but it's important that people know we do have a good stock of petrol in reserve in Australia. There is no immediate threat to petrol supplies in Australia. There will be challenges in this difficult environment in the Middle East. The Straits of Hormuz is a very important supply chain for the world, not just for Australia, for the world, including to Singapore and Southeast Asia where we get most of our petrol. So there are real challenges, but there is no need for panic buying. That will just make the situation worse.
कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन को लिखते हुए ईंधन की कीमतों और किसी भी तरह की मुनाफाखोरी पर नजर रखने को कहा है। रिजर्व बैंक की गवर्नर मिशेल बुलॉक ने कहा है कि आगे क्या होगा इस बारे में अभी कोई निश्चितता नहीं है। सिडनी में AFR बिजनेस समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ऊर्जा कीमतों के अलग अलग परिदृश्यों और उनके ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था और महंगाई पर असर का आंकलन कर रहा है।
We're going to take some time to make sense of what it could mean for inflation here. A supply shock of this nature, for example, could add to inflation pressures. And the potential implications for inflation expectations also are something that we're very alert to. At the same time, a prolonged impact on energy markets could have adverse effects on global economic activity and result in downward pressure on inflation. And it's not obvious how this might play out. So as much as I know the public would like more certainty about the direction of interest rates, it would be wrong for us to pretend we have greater certainty than we do.
ऊर्जा विश्लेषक जेस राल्स्टन का कहना है कि अब देशों को तेल पर अपनी निर्भरता कम करने पर गंभीरता से विचार करना होगा.
Energy independence has been a hot topic for a number of years now, ever since Russia invaded Ukraine. And there's differing views about what energy independence actually looks like. I think that it's widely agreed by experts like the Energy Transitions Commission, the International Energy Agency, and a bunch of others that moving towards renewables shields countries like the UK from those volatile international gas markets and moving towards net zero technologies like heat pumps, like electric vehicles, also means that we're not relying on those whims of geopolitical leaders like Putin. So it's really important that we start to move towards net zero, not just for climate change, but actually for our energy independence and for shielding ourselves when it comes to a future crisis.
बीवा क्वान द्वारा लिखी इस रिपोर्ट को SBS हिंदी पर प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने. धन्यवाद.
तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा. चलिए, यहाँ पर वक्त है आज के शो के पहले ब्रेक का और लौटकर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे. सुनते रहें SBS हिंदी. तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप सुन रहे हैं भव्या पांडे को और वक्त हो रहा है 5:18. और आपको बता दूं कि यदि आप आज के कार्यक्रम में किसी वजह से देरी से जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, SBS हिंदी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर यानी sbs.hindi.com.au/hindi पर और इंस्टाग्राम पर जाकर आप देश और दुनिया की सभी मुख्य खबरें हिंदी में सुन सकते हैं. मेलबर्न में आयोजित मेलबर्न इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जल्द ही एक बहुत ही मशहूर कलाकार भाग लेने आने वाली हैं, जिनके बारे में आपको जल्द बताऊंगी. लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं विमेंस डे की. तो एमपी नटाली सुलेमान, जो कि स्मॉल बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर विक्टोरियन पार्लियामेंट में समुदाय की कई महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम किया. इस कार्यक्रम में ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति खिलन भी विशिष्ट वक्ताओं में शामिल रहीं. तो आइए सुनते हैं बैलेंसिंग द स्केल्स यानी संतुलन बनाने को लेकर उनका क्या कहना है.
SBS हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रीति जब्बल. इस समय दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है और कई अहम घटनाएं घट रही हैं. ऐसे दौर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमें एकजुटता, सहयोग और सामूहिक प्रगति के महत्व की याद दिलाता है. इस साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम है बैलेंसिंग द स्केल्स. इसका मतलब सिर्फ नाम मात्र समर्थन नहीं, बल्कि ऐसे ठोस कदम उठाना है जो स्थायी और सार्थक बदलाव लाएं. ये थीम कार्यस्थल, समाज और नेतृत्व के हर स्तर पर बराबरी को आगे बढ़ाने पर जोर देती है. तो घर में, काम पर या समुदाय में जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, कौन से ठोस कदम जरूरी हैं और किस तरह प्रभावी समर्थन दिया जा सकता है, आइए जानते हैं. हमारे सवालों का जवाब दे रही हैं डॉक्टर प्रीति खिलन, जो कुछ ही समय पहले विक्टोरियन पार्लियामेंट में मौजूद थीं. आपको बता दें कि विक्टोरिया के पार्लियामेंट में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर सेलिब्रेटिंग वुमेन इन बिजनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. ये कार्यक्रम सेंट ऑल्बन से स्टेट मेंबर और स्मॉल बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट वेटरन्स तथा यूथ मंत्री नैटली सुलेमान एमपी की पहल पर संभव हो सका. इस खास मौके पर हमने नैटली सुलेमान से इस आयोजन के उद्देश्य और महत्व पर बातचीत की. लेकिन पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर प्रीति खिलन से, जो इस कार्यक्रम में गेस्ट स्पीकर के रूप में शामिल थी. डॉक्टर खिलन, SBS हिंदी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद.
मैं डॉक्टर प्रीति खिलन हूँ और मैं ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेलबर्न के वेस्टर्न सबर्ब्स में काम करती हूँ.
शुरुआत करते हैं इस साल के इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम से. पार्लियामेंट में आपने बैलेंसिंग द स्केल्स की बात की. आप ये भी जानती हैं कि माइग्रेंट प्रवासी महिलाओं के साथ अब भी हिंसा और शोषण का खतरा अधिक रहता है. आप इस हालात को बदलने के लिए क्या कदम उठाना चाहेंगी?
मेरे ख्याल से मैं जो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं औरतों के साथ काम करती हूँ बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, सबसे पहले तो मैं उन सारी मल्टीकल्चरल कम्युनिटी की औरतों को इनकरेज करूँगी कि वो आगे आएं, अपनी प्रॉब्लम्स को वो इग्नोर ना करें, हेल्थ नीड्स और जो भी मेडिकल नीड्स हैं उनको वो दे शुड रियली कम फॉरवर्ड टू इट. और मैंने देखा है कि जो औरतें हमारे मल्टीकल्चरल कम्युनिटी से हैं उनकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स इग्नोर रहती हैं बहुत सालों तक, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, उनको टाइम और मौका नहीं मिलता है फैमिली को बैलेंस करने, फैमिली नीड्स को पूरी करने में. तो मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि आप आगे आएँ और प्लीज़ अपने मेडिकल एडवाइस लें, और आपको जो भी हेल्थ रिलेटेड एडवाइस है वो आप आके बेशक लीजिए.
नई रिसर्च से पता चल रहा है कि जेंडर पे गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुरुष अब भी महिलाओं की तुलना में अधिक वेतन कमा रहे हैं. तो डॉक्टर खिलन, आप हेल्थ केयर से जुड़ी हैं, इस क्षेत्र में जेंडर पे गैप की स्थिति कैसी है?
देखिए, हेल्थ केयर में जेंडर के पे गैप की स्थिति अभी भी वैसी इसलिए है क्योंकि जो सीनियर पोजीशंस पे हैं उनमें यूजुअली औरतें कम जा पाती हैं, तो ऑब्वियसली उनकी पे जो है कम ही रहेगी. और दूसरा, जैसे कि मैंने अपने टॉक में बोला था कि सर्जन्स जो कि सबसे ज़्यादा कमाते हैं एज डॉक्टर्स, उसमें सर्जरी में बहुत कम महिलाएं जा पाती हैं. यू नो, अभी भी वन इज टू सिक्स का रेशियो है विमेन एंड मैन में सर्जरी में जाने के लिए. तो यस, औरतें कम कमाती हैं बिकॉज दे कैनॉट गो अप टू दोज पोजिशंस, दे कैनॉट गेट देयर एस्पायरिंग ब्रांचेस समटाइम्स, सो दैट इज देयर. बट यस, थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड आई विल रियली से दैट.
डॉक्टर, आपके अनुसार वे कौन सा एक बदलाव है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में परिवर्तन ला सकता है?
देखिए, अभी तो AI का जमाना है एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट कि AI शायद हेल्थ केयर में बहुत परिवर्तन ला सकता है, बट इन अ वेरी बैलेंस्ड वे, है ना, क्योंकि हम वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन आई थिंक AI का जब इनकॉर्पोरेशन होगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो सकती हैं एंड वी मे रियली गो वेरी फॉरवर्ड, बट स्टिल आई थिंक एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंट.
आपने अभी AI की बात छेड़ी, तो ये बताएं कि आप अपने काम या निजी जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह अपना रही हैं?
देखिए, हमारे क्लिनिक में एक्चुअली हमारी स्पेशलिटी क्लिनिक है, बट उसमें हम लोग AI रिसेप्शन का ट्रायल कर रहे हैं. तो इट माइट बी द फर्स्ट सेंटर इन ऑस्ट्रेलिया जहाँ की AI रिसेप्शन का ट्रायल हो रहा है, बट दैट इज बीइंग डन इन मेनी मेनी फेजेस. तो वी हैव टू सी हाउ इट गोज, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताऊँ, बिजी क्लिनिक्स में 500 कॉल आती हैं दिन भर में, तो पेशेंट्स बहुत देर तक वेट पे रहते हैं. तो अगर हम यही AI के थ्रू हम देख रहे हैं कि अगर उनकी वेटिंग टाइम कम हो जाए, उनके प्रॉब्लम्स काफी चैनलाइज हो जाए, तो ये सबका फायदा होगा.
चलिए अब भविष्य की बात करते हैं. आने वाली पीढ़ी की उन युवा लड़कियों को जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही हैं, जेंडर इक्विटी को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
देखिए, मैं कहूंगी कि हर लड़की को अपने सपने पूरे करने चाहिए, पर स्पेशली डॉक्टर बनने का रोड इज वेरी लॉन्ग पाथवे जो मैं गुजर चुकी हूँ, मेरी बेटी भी उससे गुजर रही है. बट आप अपना धैर्य और अपनी पूरी मेहनत आप करते रहें और एक न एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा.
डॉक्टर, हर साल वुमेन्स डे आता है और मनाया जाता है, हम इसके बारे में कुछ समय तक चर्चा करते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं. ऐसे में सवाल यह है कि बदलाव को सिर्फ एक दिन तक सीमित न रखकर पूरे साल कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है?
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा प्रीति जी, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन मनाया जाता है, पर अगर हम इस पर पूरा साल हम इस पर अमल करें और एक एक चीज जो आज हमने डिस्कस करी है, औरतों को अपने नीड्स, अपने मेडिकल नीड्स, अपने आप को आगे रखें वो और पीछे न रहें, क्योंकि लुक, वुमन इज रियली द बैलेंसिंग स्केल ऑफ द फैमिली. तो ये बहुत जरूरी है हम सबको समझना, और ये एक दिन की बात नहीं, ये पूरे साल हमें अमल करना चाहिए.
डॉक्टर खिलन, आपके समय और सलाह के लिए बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि आप जैसे और लोग सुधार की आवाज उठाते रहेंगे ताकि सिस्टम में बदलाव की संभावना और मजबूत हो सके. तो ये थी डॉक्टर प्रीति खिलन, जिनसे आपने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर बातचीत सुनी. अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं डॉक्टर नैटली सिलमन की ओर, जिन्होंने हाल ही में विक्टोरिया की संसद में वुमेन इन बिजनेस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों और जीवन अनुभवों से जुड़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया और हर एक के पास अपनी खास कहानी थी। हमने मिनिस्टर से पूछा कि इस पहल के पीछे क्या प्रेरणा रही और क्या ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाएगा।
I'm honored to have hosted the first Women in Business celebration here at Parliament House, a celebration of women in our local community, and I hope to make this an annual event. And we should be celebrating women each and every day, but we need to continue to back our women, whether it's in business, in health, and in every part of our communities. And that's why I'm really proud to have women at the table, whether it's the chair of our Multicultural Business Council or any other forum. We have women sitting at the table, providing that advice and being part of the solution and also contributing in our communities.
हम सभी जानते हैं कि बिजनेस वुमेन को बराबरी की राह में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इनमें से कई मुद्दे उनके कार्यक्रम में भी उठे, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी रही और उन्हें दूर करने के लिए किन सुझावों पर गौर करने की जरूरत है।
Thank you. And look, today is about celebrating women in business and women in community. And today is the first step of not only acknowledging the celebration, but also ensuring women have a seat at the table. And that is so important when it comes to our work in health, in education, or in any level of our community. We have equal and, of course, Our women are leading the way in Victoria.
आखिर में हमने उनसे पूछा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी फर्स्ट नेशंस और शरणार्थी महिलाएं अब भी हिंसा और शोषण के ज्यादा खतरे में हैं। उनकी भूमिका में इस हालात को बदलने के लिए क्या और कदम उठाए जाने चाहिए?
Well, I think you've heard some inspirational stories here today. Stories of women who migrated to this great country, who have worked hard, who have inspired us all, raised families and continue each and every day, whether it's facing challenges, overcoming the barriers. We, united, our women continue to inspire us all. And I think what's really important is our women being united, having a voice, having, you know, leadership roles. And that is really important. And that's why we'll always back, whether it's young girls and women, to be able to reach for their dreams.
इसी के साथ विक्टोरिया पार्लियामेंट में आयोजित इंटरनेशनल वुमेन्स डे के कार्यक्रम पर हमारा ये विशेष सेगमेंट यही समाप्त होता है। ये अंश प्रीति जबल द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया गया। ऐसी कहानी और रिपोर्ट हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sbs.com.au/hindi पर जरूर जाएं।
तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आई प्रीति जबल। चलिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और साथ में होली की भी खूब सारी बधाई। आप भी मुझे बताएं 04397997667 पर कि इस साल आपने होली किस तरह से मनाई। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम का पहला संदेश मुझे आ गया है राजेंद्र बोहरा जी की ओर से, जो कि नमस्कार लिख रहे हैं और साथ ही एक गाना भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो कोशिश करूंगी कि आज के शो में उनका ये जो गाना है वो चला सकूं। आप भी अपने फोन उठाएं और लिख भेजें मुझे 04397997667 पर कि आज का जो कार्यक्रम है आपको कैसा लग रहा है। चलिए, एक ब्रेक लेंगे और लौटकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एसपीएस हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो मेलबर्न में आयोजित मेलबर्न इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित गायिका कलापिनी कोम कली जी आ रही हैं। आइए सुनते हैं उनसे अनीता बरार की ये खास बातचीत।
नमस्कार, SBS पर, मैं हूँ अनीता बरार और हम मुलाकात कर रहे हैं जानी मानी गायिका कलापिनी कोमकलीसी से, जो पद्म विभूषण कुमार गंधर्व की पुत्री और शिष्या है। कुमार गंधर्व, जिन्हें संगीत की दुनिया में एक चमत्कार कहा जाता है। अब कलापिनी जी को संगीत तो विरासत में ही मिला था, लेकिन बताया गया कि बचपन में उन्हें संगीत से कोई भी लगाव नहीं था। क्या ये बात सच थी? तो सबसे पहले उनसे यही जानना चाहा, तो उन्होंने कहा,
बिल्कुल सही बात आप तक पहुंची है। तो शुरू से, जब से मैंने होश संभाला, तभी से घर में संगीत जो है वो गूंज रहा था चारों तरफ से। और मेरे लिए तो ये था कि जब भी मैं सुबह उठती थी और रात को सोती थी, तो सारा समय मैंने अपने आई बाबा को या तो किसी को सिखाते हुए देखा है, या उसके ऊपर चर्चा करते हुए देखा है, या संगीत से संबंधित घटनाक्रम के अंतर्गत ही मतलब पूरा घर हमारा हुआ करता था। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मैं शुरू में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेती थी संगीत में। शायद अब मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो उसके पीछे शायद एक मुझे साइकोलॉजिकल रीजन यदि मैं ढूंढूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बचपन में जब भी कभी आँख खोली सुबह उठकर, मैंने कभी अपनी माँ को अपने पास नहीं पाया। वो हमेशा दूसरे कमरे में रियाज करती रहती थी या बाबा के साथ में चर्चा करती रहती थी, ऐसे कुछ चलता रहता था।
जी जी।
और इस वजह से मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि इन लोगों को मेरे लिए कोई तवज्जो नहीं देते ये लोग, और इनको मुझसे कोई लेना देना है नहीं, तो मैं भी क्यों इनके संगीत से लेना देना रखूं, क्योंकि संगीत ही वो चीज है जो इनको मुझसे दूर कर रही है। तो इस वजह से शुरू में कई वर्षों तक मुझे बिल्कुल रुचि नहीं रही। और फिर जैसे जैसे थोड़ा समझ बढ़ती गई, बल्कि मैं ये कहूंगी कि क्या होता है कि संस्कार अपना काम करते रहते हैं चाहे न चाहे। हम जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं, जिस माहौल में हमारा सारा समय बीतता है, उसका प्रभाव हम पर निश्चित रूप से पड़ता है, अच्छा या बुरा, आप जैसा चाहें जैसा कह लें उसको। तो उस तरह से मेरे ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो हो ही रहा था, वो संस्कारों के माध्यम से हो रहा था। और शायद मेरे मन में या दिमाग में कहीं ना कहीं उस संगीत की लहरियां रच बस रही थी, जो मुझे मालूम नहीं था। मैं ऊपरी तौर पर उससे एक तरह से बहुत अलगाव महसूस कर रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं मेरे में अंदर जा रहा था। तो जब एक लंबे समय बाद जब मैंने सही अर्थों में होश संभाला, तब मुझे लगा कि यही एक वो चीज है जो मेरे माता पिता से मुझे जोड़ सकती है।
तो कि जब आपने उनके अपने सुर भी पहचान लिए और उसके माधुर्य को भी आपने पहचान लिया, तो उससे आपके ऊपर अपेक्षाओं का जो भार है वो आपको कितना महसूस होता था?
ये बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया है। जबरदस्त भार महसूस किया है मैंने। हाँ। अभी भी करती हूँ कई बार, ऐसी बात नहीं है कि मैं पूरी तरह से उससे उबर चुकी हूँ, बल्कि मुझे अब ऐसा लगता है कि उस भार के अंतर्गत रहना भी एक मेरे लिए एक सुखद बात है। कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं कि हम उससे पूर्ण तरह से मुक्त हो जाएं, बल्कि उससे मुक्त होना मैं नहीं चाहती सच कहूं तो। वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित भी करता है, वो भार आपको प्रेरित करता है ऐसे मुझे लगता है, और वो जिम्मेदारी आपको प्रेरित करती है। अदरवाइज हम बेछूट हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। पर ये बात सही है कि शुरू के वक्त में, शुरू के समय में जब मैंने गाना सीखना शुरू किया, और कई वर्षों के बाद में जब प्रस्तुति का अवसर बना और जब मैंने व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी शुरू की, तो लोगों की भी बहुत जबरदस्त अपेक्षाएं मेरे से थी, जिन्हें मैं गलत नहीं मानती एक तरह से, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर संगीत मेरे माता पिता मेरे गुरुओं के माध्यम से सुना हुआ है, तो स्वाभाविक है उनकी अपेक्षाएं मुझसे होना बहुत लाजमी बात थी। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं उनको सेटिस्फाई कर सकूं, बल्कि मैं अपने खुद को भी एक तरह से सेटिस्फाई पहले करूं, तभी जाके मैं किसी और को सेटिस्फाई कर सकूं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है मेरे लिए, और मैंने शुरू के कई वर्षों में बहुत प्रयत्न किए इस माध्यम से कि मैं उस दायरे से बाहर भी निकल सकूं और उस दायरे को मैं देख भी सकूं। ये सब करते हुए मुझे एक बात जो समझ में आई कि मुझे यदि इन सब बातों के ऊपर चढ़कर यदि कुछ हासिल करना है तो मुझे उसके अंदर भी उतनी ही गहराई से जाना होगा। जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, उसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, हम उसके ऊपर आकर उसके सौंदर्य को, उसकी उसकी ब्यूटी को नहीं समझ सकेंगे, और हम ना तो खुद समझ पाएंगे ना हम अपने श्रोताओं को समझा पाएंगे। तो वो एक प्रोसेस है जो लंबे समय तक करते रहने से शायद उसके बाहर हम आ सकते हैं। वैसी कुछ प्रोसेस मेरी अभी भी जारी है।
जी बिल्कुल, मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि कुमार जी का जो उनका जो संगीत है वो तो इतना अतः समुद्र है, उसके अंदर आप कितने भी गोता लगाई है, आपके हाथ सारे मोती तो आ ही नहीं सकते,
जाने
कितने बिखरे हुए हैं। तो जो आपकी शैली है उनसे तो प्रभावित तो होंगे ही, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो कुछ लीक से हटके करने की भी कोशिश है क्या आपके?
जब तक आप आपके गुरु के द्वारा गाई हुई शैली को पसंद नहीं करते
जी,
आप समर्पित भाव से नहीं सीख पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है।
हाँ।
तो इसलिए निश्चित रूप से मुझे उनकी शैली में बेहद विश्वास रहा है और हमेशा रहेगा।
तो वो बिल्कुल अलग है,
मालूम है कि वो, हाँ वो बहुत अलग है शैली। वो बहुत से घरानों की खूबसूरती एक साथ लेकर बनी हुई एक शैली है
जी।
तो और मुझे मालूम है कि उसके पीछे कुमार जी के क्या विचार रहे हैं, वसुंधरा जी के क्या विचार रहे हैं। जहां तक मेरा अपने कुछ उसमें नए जोड़ने का प्रश्न है, मैं तो एक क्या कहूँ, एक एक सिंसियर विद्यार्थी कह लीजिए, एक सिंसियर डिसाइपल कह लीजिए, के माध्यम से के रूप में मैं उसे आत्मसात भी करने की कोशिश करती हूँ, और उसे वापस अपने तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सामने, श्रोताओं के सामने उस बात को रख सकूँ। इस प्रोसेस के दौरान जो मेरी अपनी कुछ खूबियां हैं या जो मेरी अपनी कुछ कमियां हैं, उन दोनों के मेल से जो कुछ नया बनकर आता है, शायद, मुझे नहीं मालूम, ये श्रोता बताएंगे कि उन्हें उस बारे में क्या लगता है, बजाय इसके कि मैं अपने गाने के बारे में बताऊं, ये श्रोताओं की तरफ मैं देखूंगी और उनसे मैं चाहूंगी कि वो इस बारे में बात करें, बजाय इसके कि मैं अपने गाने के बारे में बात करूं।
अच्छा, भी मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि जो आपकी रचनाओं का चयन होता है उसको आप, उसका आप किस तरह से चयन करती हैं, क्योंकि वो जो भार है आपके ऊपर, विशुद्ध होना चाहिए, कुछ मिश्रित हो जाए, कहीं लोक संगीत आ जाए।
जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, मेरे मालवा का लोक संगीत मेरे बहुत दिल के करीब है, मेरे मालवा का निर्गुण मेरे बहुत दिल के करीब है, परंतु उसी के साथ में कुमार जी और वसुंधरा जी द्वारा सिखाई हुई परंपरागत रागों की बंदिशें, जो परंपरागत राग हैं, जो हमारे अनेक अनेक मतलब शतकों से चले आ रहे हैं, बहुत सुंदर राग, उन रागों में बनाई हुई परंपरागत बंदिशें जो पुराने कंपोजर्स से बनाई हैं, और उन रागों में बनाई हुई कुमार जी की भी बंदिशें।
हाँ।
तो इन दोनों का मैं कोशिश करती हूँ कि समन्वय मेरी परफॉर्मेंस में रहे, ताकि वो जो पुराना, जो बहुत ही सुंदर एक मतलब एक कैप्सूल है, वो भी सामने आए, और उसी के साथ कुमार जी ने उन रागों को लेकर क्या विचार किया है, अपनी बंदिशों के माध्यम से उन्होंने उस राग की क्या खूबसूरती हमारे सामने लाई है, उसको भी मैं कहीं ना कहीं आप सब लोगों के साथ, श्रोताओं के साथ साझा कर सकूं, ये मेरा प्रयत्न रहता है। उसी के साथ में जैसे आपने कहा, मेरा मालवा का निर्गुण, मेरे मालवा के लोकगीत भी कहीं ना कहीं झांकते रहे मेरी परफॉर्मेंस में, उसका भी मैं ध्यान रखा करती हूँ।
तो मन तो मेरा कर रहा है कि कुछ आप हमारे लिए भी गुनगुनाएं। एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जो शास्त्रीय संगीत है, कई कारण हो सकते हैं, तो उसको किस तरह से लोकप्रिय बनाया जा सकता है?
देखिए, एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, जो कि आप जानती भी हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, शास्त्रीय संगीत एक कल्टीवेटेड आर्ट फॉर्म है। ये कोई लोक धुन नहीं है, लोकगीत नहीं है, ये कोई पॉपुलर भजन नहीं है, है ना, जो मासेस में गाया जाए या मासेस इसको एक्सेप्ट करें। जब कोई चीज संस्कारित होती है, कल्टिवेटेड होती है, तो उसे सुधी लोग अपनी अपनी मतलब जिसको हम कहते हैं अभिरुचि, मतलब जो आपकी आपकी पर्टिकुलर उस चीज को चाहने की जो एक दृष्टि है, जब तक वो आपकी दृष्टि नहीं बनेगी, आपका नजरिया नहीं बनेगा, वो आपसे आकर नहीं मिल सकेगी वो चीज। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शास्त्रीय संगीत ये एक कल्टिवेटेड ऐसा फॉर्म है जो खुद होके आपसे बात नहीं करेगा, आपको उसके करीब जाना होगा। यदि आप एक बार दो बार उसके करीब चले गए और यदि आपने दो या तीन महफिलें सुन ली, फिर वो अपना जादू आपके ऊपर बिखेरना शुरू करेगा। उसका प्रचार प्रसार तो आजकल बहुत हो रहा है, फिर भी अभी वो एक सीमित दायरे के लोगों के बीच में ही वो जाना जाता है। ये समझने वाली चीज है। ये क्लासिकल म्यूजिक ऐसा नहीं है कि आप आते जाते घूमते फिरते आपके कानों पे कुछ पड़ गई बात और आप उसको गुनगुनाने लग गए, क्योंकि उसका
जी
शास्त्र है, उसका व्याकरण है। जब तक आप उन खूबियों को नहीं थोड़ा समझेंगे, आपको वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी चीज। और शायद इसीलिए कुछ लोग कुछ सीमित दायरे में इसका चलन है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि उसका कोई मतलब समय निकला जा चुका है, ऐसा नहीं है। वो बनी हुई है चीज, वो बनी हुई है चीज, बल्कि कई कैप्सूल्स में वो हम देख रहे हैं, जहां जहां जाते हैं नए लोग भी कुछ बहुत सुंदर तरीके से जुड़ रहे हैं, उसमें बहुत रुचि ले रहे हैं। दायरा कम हो सकता है, लेकिन रुचि बहुत बड़ी है।
जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद करूंगी। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों, इस अंश को आप तक लेकर आई अनीता बरार। और आपको बता दूं कि कलापिनी जी के लाइव संगीत प्रदर्शन के लिए जो गिव अवे हमने जारी किया था, उसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आनंद लेने का सुनहरा अवसर इस बार मिला है रमा भारद्वाज जी को, यानी उन्होंने इस गिव अवे के डबल पासेस अपने नाम कर लिए हैं। ये जो कार्यक्रम है, ये 7 मार्च को 7:30 बजे हॉथॉर्न आर्ट्स सेंटर मेलबर्न में होगा। चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौटकर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताऊंगी कि मेलबर्न में एक बहुत ही खास मार्केट है, उसमें क्या नया था। सुनते रहें SBS हिंदी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है SBS हिंदी के कार्यक्रम में, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो हाल ही में SBS साउथ एशियन आपके लिए लेकर आया फरवरी और मार्च 2026 में होने वाली बहुप्रतिष्ठित मल्टी फॉर्मेट सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया और भारत की शीर्ष रैंकिंग महिला क्रिकेट टीमों को मैदान पर लाइव देखने का मौका। और आपको बता दूं कि इस बार इस गिव अवे के जो विजेता हैं उनका नाम है भानु। उन्होंने हमें अपना जवाब भेजा है और हमने पूछा था कि भारतीय या ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम में आपकी पसंदीदा खिलाड़ी कौन है और क्यों। तो वो लिखते हैं कि माय फेवरेट प्लेयर इज हरमनप्रीत सिंह बिकॉज शी हैज द विनिंग एटीट्यूड। तो इनको मिल रहा है मौका अपने पसंदीदा खिलाड़ी को चीयर करने का सीधा स्टेडियम से। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आइए अब आपको बताती हूँ रमजान नाइट मार्केट के बारे में। मेलबर्न के डैंडेनोंग सबर्ब में रमजान नाइट मार्केट का आयोजन हो रहा है। नबील हसन की इस रिपोर्ट में उन्होंने वहां मौजूदा अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि रमजान के दौरान ऐसे बाजार लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं, ये कैसे अलग अलग समुदाय के लोगों को एक जगह लाते हैं और शहर की संस्कृति और सामुदायिक जिंदगी को खास बनाते हैं। आपको बता दूं कि इस मौके पर विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलन भी वहां मौजूद थी और उन्होंने SBS हिंदी से खास बातचीत की।
रमजान के महीने में जब मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं, तो अफ्तार यानी रोजा खोलने के बाद शहरों में कई जगह ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है जहां लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ शाम बिताने पहुंचते हैं। ऐसे बाजार या मेले अक्सर देर रात तक चलते हैं। एक ऐसा ही आयोजन इस साल मेलबर्न के डैंडेनोंग सबर्ब में हो रहा है, रमजान नाइट मार्केट। इसी से जुड़ी है हमारी ये रिपोर्ट। SBS हिंदी पर मैं हूँ नबील हसन। डैंडेनोंग में लगा ये रमदान नाइट मार्केट गुरुवार से लेकर रविवार तक आयोजित किया जा रहा है और शाम 7 बजे इसकी शुरुआत होती है। यहाँ फूड स्टॉल्स, शॉपिंग के ऑप्शंस और बच्चों के लिए राइड्स भी लगाई गई हैं। हमने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया और वहाँ मौजूद अलग अलग समुदाय के लोगों से बात करके उनका अनुभव जाना। सबसे पहले सुनिए विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलन का क्या कहना था जो उस दिन मार्केट का दौरा करने पहुंची थीं।
Well, visiting the Ramadan night market has been a real priority. What an incredible impact this has had on the community. And so to join Ahmed and the team here tonight has been a real joy. And to see both a celebration of culture, but the way the community is sharing in an incredibly special experience. It's been a wonderful evening. Our Labor government will always support our communities to stay strong, cohesive, to celebrate culture and faith, and this is, we're seeing it here tonight at Ramadan. I think it sends a really strong message that no matter your faith, no matter your background, there will always be a place for you here in Victoria. And as Premier, it's a great sense of pride for me that people from around the world choose us. Nights like tonight reinforce how our social cohesion in Victoria is strong. We need to continue to strengthen it.
प्रीमियर जेसिंटा एलन का कहना था कि जिस तरह अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ एक साथ नजर आ रहे हैं वो ये दिखाता है कि चाहे आप किसी भी धर्म या बैकग्राउंड से आते हों, विक्टोरिया में हर किसी के लिए जगह है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और मूल रूप से भारत से संबंध रखने वाले मार्विन एजाज से भी हमारी बात हुई। वो एक साल पहले सिडनी से मेलबर्न आए हैं। उन्होंने रमदान के दौरान सिडनी के लेकेम्बा नाइट्स और डैंडेनोंग के रमदान नाइट मार्केट दोनों का अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मेलबर्न में इतना बड़ा आयोजन देखने को मिलेगा।
So my name is Marvin. I'm originally Indian and I moved to Melbourne about a year ago from Sydney. I was born here in Australia and I just moved here to come see the Ramadan night markets. It's very good to see the different scenes between Sydney and Melbourne. I didn't expect Melbourne to be this big with Ferris wheels and a lot of family activities. It's really nice. It's very nice and there's a lot of food. It's amazing, you know. It's good to be around a big community like this and see people, you know. It's best when everyone's together and it's very lively. So I'm very, very lucky to experience both Lekemba and here in Melbourne, in Dandenong. You know, very lucky to live in both cities. And I came here last year as well for the first time. And they've just improved it so much more. I mean, there's so many more people, so many more activities. Ferris wheels, food, activities for kids, families, all ages, all nationalities. And I think they're maybe giving Lekemba a run for their money, but it looks good. It's really good. And I love to see it. And it's amazing, you know. I'm in both cities, both Lekemba and here in Dandenong. The culture is great. The vibes is great. The people are great. It's amazing.
Marvin ne iske saath hi sabhi logon ko saath milkar rehne ka sandesh bhi diya.
I think it's very important to remember that you can't designate an idea towards a whole group of people based on certain individuals, you know. At the end of the day, we're all human. We all come from the same tree. And it's all love, you know. I mean, it's important to spread that love because we all started in the same place. We all end up in the same place. So we're all brothers and sisters. And I think when a community is together, there's more love and it's more fun. And what's life without a little fun?
मुंबई के अश्विनी और दुर्गेश जो अब मेलबर्न के वेस्टर्न सबर्ब में रहते हैं बताते हैं कि भारत में भी वो रमदान के दौरान ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते थे और यहाँ भी इस परंपरा को जारी रखे हुए हैं।
We used to enjoy them when we were in Mumbai, and yeah. Now I think all over again we are having this fun in Melbourne, which is
yeah. Really in Mumbai, we used to go to Muhammad Ali Street. Yeah, that was our ritual during Ramadan.
Yes.
So yeah, continuing that here, feeling great. We have something of that sort. We always miss the nightlife of Mumbai, although very chaotic, but also there is a charm in that chaos. And yeah, we always try to find some nightlife in Mumbai, in Melbourne. And of course, Melbourne CBD has its own charm. But yeah, finding something like this, I think Ashwini will also agree.
Yeah, I would say that we would have never expected to see this kind of crowd in Melbourne. Coming from Mumbai, we have used to this kind of a hustle bustle. But seeing this in Melbourne, we really appreciate seeing all these different people coming together, enjoying different foods and cuisine. That's really awesome, right?
अश्विनी और दुर्गेश का कहना था कि ऐसे कार्यक्रमों में सिर्फ खाना पीना ही नहीं बल्कि एक साथ मिलना जुलना और शॉपिंग करना भी उन्हें पसंद है।
आई थिंक इट्स ग्रेट टू सी डिफरेंट कम्युनिटीज कमिंग टुगेदर टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल। अगेन फेस्टिवल नीड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर रिलीजन और कम्युनिटी। सो या इट्स ग्रेट टू सी पीपल कमिंग आउट हियर हैविंग फन इन अ वे दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर।
फॉर मी इट्स नॉट जस्ट फूड बट ऑल्सो द ज्वेलरी एंड all the dresses and all the shopping vibe that is also available here, that's also interesting, and to see everybody coming together itself is a big delight.
सेंट किल्डा में रहने वाले इटली मूल के जैक ने बताया कि उन्हें अलग अलग संस्कृतियों को देखना और समझना पसंद है और इसी वजह से आज वो यहाँ आए हैं।
My name is Jack. I've come tonight to just experience different culture. I'm Italian myself, but I'm a big fan of other cultures, seeing how people do things and just being around different community, different culture. I'll be honest, it warms my heart seeing families and friends. It's not about religion, I think it's just about getting together and just experiencing people for who they are. It's an amazing thing.
हमारी मुलाकात फैसल और सना से भी हुई। मेलबर्न आने से पहले वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में रहते थे। उन्होंने बताया कि डैंडेनोंग के इस नाइट मार्केट का अनुभव काफी अच्छा रहा और यहाँ परिवार के साथ करने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि ऐसे मौकों पर भारत में अपने परिवार को वो जरूर मिस करते हैं।
My name is Faisal. We, I think, almost lived in New Zealand, in Auckland, for almost 10 years before moving to Melbourne. We are originally from India, but we are missing our family in Ramadan here. But the community here is way strong than Auckland in New Zealand. Of course, you know, it wasn't this much fun. And I think you can see the vibe is nice here, you know, the festival is really good. Lots of people, lot of food to eat and stuff. So of course, I think we enjoy here much more than what we used to do in New Zealand. Apart from that, I think, and my wife, of course, she loved the, you know, the ethnic dresses and shopping and stuff. So apart from food, all these things.
My name is Sana. I'm here since 5 years in Melbourne. It's definitely good here compared to Auckland. It's a larger community. There are a lot of people. And even compared to India, it's pretty good because over there in mosques, there are just men. But here, it's the whole family. We are able to go celebrate together in events like these. It's really good to see a lot of different communities coming in together. It's not just Muslims here. I can see people from different communities, different countries coming and celebrating in together. It's really good to see that. It's a very good vibe.
SBS Hindi ke liye, main hoon Nabeel Hassan.
तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आए नबील हसन। और देखिए, आज के कार्यक्रम में इतनी जल्दी जल्दी हमने बातचीत की है कि जो समय है वो जल्दी कट गया। आपको कहना चाहूंगी कि इतने दिनों बाद यदि आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ SBS हिंदी पर, तो 04397997667 पर जरूर बताएं। और इसी के साथ आज के लिए आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। एक बार फिर से आप सभी का SBS हिंदी के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी भारत यात्रा पर एक खास अंश आप सभी के लिए लेकर आऊंगी, जिसमें बताऊंगी कि इस बार इंडिया जाकर मैं कहां कहां घूमी और मेरे जो अनुभव थे वो किस तरह के थे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुनते रहें SBS हिंदी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।